पार रेडियो की प्रस्तुति
सुनो गजर क्या गाए।
गजर की तरह विशिष्ट अंदाज में अपनी आवाज के साथ बिलासपुर वासी
बिलासपुरियंस की आवाज
गजर ने किया है इशारा।
नमस्कार श्रोता साथियों, मैं हूं आपकी सहेली अलंकृता और घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि वक्त हो चला है गजर का। और आप सभी तो जानते ही हैं कि आज क्या है। सुबह से ढेर सारे मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं हमें बधाइयां देने के लिए। जी हाँ, आज है अर्पा का स्थापना दिवस। तो सबसे पहले तो आप सभी को अर्पा रेडियो के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे श्रोताओं से ही तो हमारी पहचान है। और आज के इस दिवस के उपलक्ष्य में हम बात करेंगे उनसे जिन्होंने अर्पा रेडियो की इमेजिनेशन को वास्तव में बदला है, जिनकी आवाज आप अक्सर प्रेजेंटर्स के रूप में सुनते हैं। तो चलिए चलते हैं इनसे बातचीत करने। तो अभी मेरे साथ जो हैं, इनकी आवाज आपने कई बार सुनी है अर्पा रेडियो में, टॉक चित विद अरुण और कोरोना कॉलिंग जैसे कार्यक्रमों में। ये थिएटर आर्टिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं और छत्तीसगढ़ी फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाते हुए आपने इनको जरूर देखा होगा। बोला जाए तो ये फुल ऑन पैकेज हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि कैसे ये अर्पा से जुड़े हुए हैं शुरुआत से।
नमस्कार आप सभी को, सबसे पहले अर्पा रेडियो के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। अर्पा रेडियो में मेरी शुरुआत तब से हुई है जब अर्पा रेडियो अपने टेस्ट पीरियड पे था और टेस्ट ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुई थी। तब से मैं अर्पा रेडियो के साथ जुड़ा हुआ हूँ और कुछ प्रोग्राम भी मैंने अर्पा रेडियो के लिए किए हैं। उस समय क्योंकि शुरुआत के समय में कोविड का दौर था, तो मैंने एक कार्यक्रम किया था कोरोना कॉलिंग, जो लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। और उसके माध्यम से हमने उस समय जागरूकता फैलाने के लिए हमने कार्यक्रम प्रस्तुत किया था और इसी तरह से मेरी शुरुआत हुई थी।
कोरोना कॉलिंग के बारे में कुछ बताइए।
कोरोना कॉलिंग जो कार्यक्रम था वो बस कुछ लोगों के साथ ऐसे मजे मजे में हमने बातचीत की और फिर ऐसा लगा कि इसको कार्यक्रम बनाया जा सकता है। तो हम यहाँ से, मैं कोरोना के रूप में लोगों को कॉल करता था, फ्रेंक कॉल जैसा, और कोरोना उनके पास ना आए इसके लिए वो क्या तैयारी कर रहे हैं, या कोरोना उनके पास ना आए इसके लिए वो उनकी क्या तैयारी है और इसके लिए वो सजग हों, ये हमारी कोशिश थी।
अच्छा, तो कोई ऐसा किस्सा बताइए भैया जो आपको याद हो, कुछ अलग सी बातचीत हुई हो किसी से इस दौरान।
हाँ, एक दो लोगों से ऐसी भी बात हुई कि वो कोरोना का नाम सुन के ही नाराज हो गए थे और गाली गलौज में भी उतर आए थे।
इस प्रकार के भी किस्से रह चुके हैं।
जी बिल्कुल।
फिर उसको हैंडल कैसे किया आपने?
नहीं, बाद में फिर जब उनको भी समझ में आया कि हाँ ये प्रैंक कॉल है, अर्पा रेडियो की तरफ से की गई है, तो फिर उन्होंने भी उसको अच्छे से स्वीकार किया।
तो अर्पा के इतने साल हो गए हैं और आज अर्पा का स्थापना दिवस है, आपको कैसा महसूस हो रहा है बीइंग अ पर्सन जो शुरुआत से अर्पा के साथ जुड़ा हुआ है?
अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है। और मैं अर्पा रेडियो के साथ कार्यक्रमों में तो नहीं, पर अर्पा के जो दूसरी चीजें होती है उसमें लगातार जुड़ा हुआ हूँ। और फिलहाल अभी अर्पा रेडियो के साथ मैं कोई कार्यक्रम नहीं कर रहा हूँ, पर फिर भी मैं इसके साथ में लगातार जुड़ा हुआ हूँ और दूसरे कार्यक्रमों में या दूसरी चीजों में मैं हमेशा अर्पा रेडियो के साथ हूँ।
भैया, काफी दिन हो गए हैं हमारे श्रोताओं ने अरुण के अंदाज में उनकी आवाज नहीं सुनी है, तो अपने अंदाज में हमारे श्रोताओं को कुछ कहिए।
कोशिश करता हूँ। हाँ, तो आप सबे जन ला अर्पा रेडियो के स्थापना दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई। अब भाई अर्पा रेडियो ला सुनत रहो और बने गुनत रहो, तो आप सबे जन ला गाड़ा गाड़ा बधाई है। हाँ, तो आप सबे जन ला अर्पा स्थापना दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई है जी।
आप सभी श्रोताओं को अर्पा रेडियो के स्थापना दिवस की ढेर सारी बधाइयां। आप सभी अर्पा रेडियो सुनते रहें और आनंद लें।
हाँ, आप सभी अर्पा रेडियो सुनते रहें और आनंद लेते रहें। आप सभी श्रोताओं को अर्पा रेडियो के स्थापना दिवस की ढेर सारी बधाइयां। हाँ, खामोश।
लेकिन आप लोग खामोश नहीं होइएगा, क्योंकि अर्पा रेडियो भी कभी खामोश नहीं होगा, और सुनते रहिए अर्पा रेडियो।
तो मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि इतनी सारी आवाज एक ही इंसान निकाल रहे हैं सामने बैठने के बावजूद। वैसे हमारे श्रोता साथी आपके दर्शन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि अरुण भैया आखिर दिखते कैसे हैं, तो जरा ये तो बताइए कि किन किन मूवीज में आपने काम किया है, कहाँ कहाँ वो आपको देख सकते हैं।
वैसे तो मैंने कई छत्तीसगढ़ी फिल्मों में और शॉर्ट फिल्म में काम किया है, और यूट्यूब में आप मेरी एक फिल्म है घर परिवार, छत्तीसगढ़ी फिल्म है घर परिवार, उसमें आप मुझे देख सकते हैं। इसमें मैंने हीरो के दोस्त का किरदार निभाया है। एक और छत्तीसगढ़ी फिल्म है साथी रे, उसके अलावा एक पहली छत्तीसगढ़ी वेब सीरीज यहाँ पर बनी थी जिसका नाम था सैनिटाइजर, उसमें भी आप मुझे एक पुलिस वाले के किरदार में देख सकते। इसके अलावा कुछ शॉर्ट फिल्म्स हैं, विक्षिप्त के नाम से है, व्यक्ति की गरिमा, ऐसी कुछ फिल्में हैं, शॉर्ट फिल्में हैं जिसमें आप मुझे देख सकते।
तो साथियों आप सब समझ गए ना कि कहाँ कहाँ आप लोग अरुण भैया को देख सकते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा अरुण भैया से बात करके, तो चलिए चलते हैं अब हमारे दूसरे प्रस्तोता के पास। श्रोता साथियों, अरुण भैया से बात करने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ उनके पास जो आप सबको मितान्हा नाम देते हैं, यानी कि मितान मन के पसंद वाले अनीश भैया के पास। चलिए इनसे जानते हैं कि इनका अर्पा के साथ सफर कैसे शुरू हुआ।
कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई और मेरा अभिवादन। और जैसा कि अलंकृता ने पूछा कि रेडियो में मेरा सफर कैसे शुरू हुआ, तो अर्पा रेडियो में मेरे सफर शुरू होने की बात जो है वो मैं बताऊं, उससे पहले मैं बताऊं कि रेडियो में मेरा सफर कैसे शुरू हुआ। दरअसल आकाशवाणी बिलासपुर में मैं आकस्मिक उद्घोषक हूँ, वहां तक ले जाने का जो श्रेय है वो सुनील चिपड़े भैया को जाता है और साथ ही साथ संज्ञा भाभी को भी जाता है, क्योंकि रेडियो से जोड़ने का वो लगातार मेरे को प्रयास कर रहे थे पर वो हो नहीं पा रहा था। पर वो एक समय ऐसा आया कि उन्होंने ही जबरदस्ती फॉर्म भर दिया था।
अच्छा।
जब भर्ती हुई बोले नहीं हम भर दिए, तेरा फीस भी भर दिया, तेरे को अब जाना है। तो मैं बोला कि मैं इसे नहीं जा पाऊंगा भैया, मैं क्या करूंगा वहां जाकर। बोलता तुम चले जाओ, वहां जो करने बोलेंगे तुम ईमानदारी से कर, रही बात फीस वगैरह की तो हम सब पटा दिए, तो तुमको उस पैसे के सम्मान के लिए तुमको जाना। तो फिर मुझे लगा कि नहीं चलो, मेरे लिए सोचने वाले जब इतने लोग हैं तो मुझे जाना चाहिए। फिर मैं वहां गया, वहां पर जो भी फॉर्मेलिटीज थी, जो भी वॉइस टेस्ट था और जो भी राइटिंग रिटर्न एग्जाम था वो सारा दिया गया, फिर वो हो गया। फिर वो तो वहां से फिर रेडियो को मेरा सफर शुरू हुआ। और उसके बाद फिर साथ में रहते रहते संज्ञा भाभी का एक सपना था अपना कम्युनिटी रेडियो चलाने का, तो लगातार चर्चा चलते रहती थी। तो मैं और संज्ञा भाभी इस बीच में बहुत सारी चीजें करते भी रहे, तो फिर बस करते करते वो हुआ। और फिर एक समय आया कि जब हमको प्रसारण के लिए हमको अनुमति मिली और फिर वहां से जो सफर शुरू हुआ।
तो आप अर्पा रेडियो के साथ शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं, और एक वक्त था जब ये अपने नन्हे नन्हे कदम बढ़ा रहा था, हमारे पास लाइसेंस नहीं था, और आज हम इस मुकाम पे हैं कि पूरे देश भर के श्रोता हमें सुनते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है?
ये बड़ा अच्छा सवाल है, वो इस लिहाज से क्योंकि सच बात है जब हम कोई चीज शुरू करते हैं तो वो कहाँ तक पहुँच पाएगा, कितना सक्सेस होगा, हम कहाँ तक अपनी बात पहुँचा पाएंगे, और जो सोच करके हमने रेडियो शुरू किया वो हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे कि नहीं, ये थोड़ी सी शंका रहती थी हमको। पर धीरे धीरे शुरुआत हुई, संज्ञा भाभी के दिन रात की मेहनत से धीरे धीरे कार्यक्रम बनते गए, हम सब मिलकर के कार्यक्रम बनाते गए। फिर उसके बाद फिर हमने जो ट्रायल जो था हमारा वो शुरू हुआ, तो एक समस्या थी कि ट्रायल तो हम कर रहे लेकिन लिसनर्स कैसे जोड़े हम। तो उसके लिए फिर संज्ञा भाभी बोली कि अनीश चूंकि श्रोताओं के बीच तुम्हारी पहचान अलग से है तो तुम सीधे बात करके वो करो करके। तो फिर मैंने श्रोताओं से बात की, अर्पा रेडियो के बारे में बताया, धीरे धीरे हमने शुरुआत की और फिर बढ़ते बढ़ते और श्रोताओं के ही माध्यम से भी ये चीज बढ़ी है, क्योंकि एक श्रोता दूसरे श्रोता को बताता है और ऐसे होते होते फिर बहुत सारी चीजें हुई। तो आज जिस स्थिति में हम पहुंचे हैं उस मेहनत के साथ, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जो हमने सोचा था वहां एक लेवल पर हम पहुंच गए।
अच्छा अनीश भैया, कार्यक्रम तो सब देते हैं पर आप कुछ अलग करते हैं, जो कि है लोगों को मितन्हा नाम देना, उनसे रिश्ते बनाना और उस रिश्ते को निभाना भी। तो ये लोगों को मितन्हा नाम देने का ख्याल आपको कैसे आया? बड़े ही अनोखे नाम आप देते हैं, जैसे कि गन्ना वाले मितान, देख ताक के फसना वाले मितान, तो ये ख्याल कैसे आया?
दरअसल हमारे छत्तीसगढ़ में जो एक परंपरा है मितान बदने का, तो मितान जो होता है वो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सम्माननीय जो है रिश्ता है, एक मितान का दूसरे मितान से जुड़ना। तो मेरे दिमाग में ये चीज आया कि जो इतना पवित्र है, जिसमें इतना प्रेम है, जिसमें इतना समर्पण है, तो क्यों ना उसी से ही जोड़ा जाए। ताकि श्रोताओं से वो प्रेम भी बना रहे, वो समर्पण भी बना रहे और वो आपसी भाईचारा भी बने रहे। तो मुझे लगा कि ये इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और रही बात नाम कैसे देने का आइडिया, तो उसके लिए मैं चूंकि श्रोताओं से लगातार जुड़ा हूँ तो हर श्रोता से मेरे पर्सनली बातचीत होती रहती किसी न किसी माध्यम से, तो उनके काम के संदर्भ में, उनके बातचीत के संदर्भ में बहुत सी चीजें जब हो जाती तब मेरे को समझ में आ जाता कि नहीं ठीक है, इस चीज से इनकी एक आइडेंटिटी निकलती है। वो आइडेंटिटी को फिर मैं मितन्हा नाम के रूप में दे देता हूँ
और वो भी उस आइडेंटिटी को लेकर आगे चलते हैं और हर पसंद में वो अपना वही नाम भेजते हैं। अच्छा,
प्रेम है उनका कि मेरे द्वारा दिए गए नाम को वो अपनाते हैं, ये प्रेम ही है श्रोताओं का, यही प्रेम है जो मितान के रूप में सामने आ रहा है।
बिल्कुल, और श्रोताओं का आपके प्रति प्रेम कुछ अलग ही है। आप हमारे श्रोताओं के पसंदीदा प्रेजेंटर हैं, प्रस्तोता हैं। तो आज अर्पा रेडियो का जन्म दिवस है, तो आप इस उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे श्रोताओं को?
मैं अपने श्रोताओं को बस यही कहना चाहता हूँ कि जो प्रेम आप लगातार दे रहे हैं, जो साथ आप दे रहे हैं, जो समर्पण आप दे रहे हैं, क्योंकि श्रोताओं के प्यार के बिना, समर्पण के बिना, सलाह के बिना ये हो ही नहीं सकता कि कोई भी केंद्र अपना प्रसारण सही दे सके या कहीं वो एक किसी मुकाम पर पहुंच सके। क्योंकि मैं हमेशा अपने श्रोताओं से भी यही कहता हूँ कि श्रोता नहीं होंगे तो हमारा कोई वजूद नहीं। भाई आप सोचिए कि मैं एक प्रोग्राम दे रहा हूँ, मेरा कोई सुनने वाला ही नहीं है तो क्या है उस प्रोग्राम का
मतलब ही नहीं,
कोई मतलब ही नहीं है वो। तो श्रोता जब तक सुनेंगे नहीं, उसके ऊपर रिप्लाई नहीं करेंगे या अपनी शिकायतें नहीं या फिर सलाह नहीं देंगे तो हम कैसे हो सकते। तो मेरे लिए तो श्रोता से बढ़कर कोई भी नहीं है, श्रोता है तो हम है, मैं बस ये मानता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं भैया आप लोग बड़े, मतलब नहीं, मैं बोलता हूँ कि आप बड़े हो, श्रोता मेरे लिए सबसे बड़े हैं, उसके बाद फिर हम प्रस्तुत करते हैं। बस ये जो मेरे मन में जो यही भावना को लेकर के मैं कार्यक्रम भी पेश करता हूँ और यही चीजें मेरे दिमाग में श्रोताओं के प्रति यही सम्मान। तो अपनी इस बात के साथ ही साथ अब अंत में इस साक्षात्कार के अंत में आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद के साथ साथ ढेर सारी बधाई आज की स्थापना दिवस की।
बहुत बहुत शुक्रिया अनिल भैया, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और हमारे श्रोता तो आपकी आवाज सुनने के लिए हमेशा ही उत्सुक रहते हैं। तो चलिए साथियों, अब चलते हैं एक और प्रस्तोता के पास। श्रोता साथियों, आप सभी तो जानते ही हैं कि अर्पा रेडियो एक एनजीओ लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित होता है और फिलहाल मेरे साथ हैं लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी की वर्तमान अध्यक्ष, अर्पा रेडियो के मार्केटिंग हेड रचिता देशपांडे जी। तो चलिए इनसे बात करते हैं इनके एनजीओ के बारे में और ध्यान से सुनिएगा इनकी आवाज। इनसे बातचीत के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि इनकी आवाज आप रेडियो के किस कार्यक्रम में सुनते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनसे इनके एनजीओ के बारे में जानते हैं। आप अपने एनजीओ के बारे में कुछ बताइए।
आप सभी को मेरा नमस्कार। लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी की शुरुआत हुई थी 2008 में और तब से लगातार हम किसी न किसी फील्ड में अपना वर्क हम जारी रखते रहे। सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए ऑडियो बुक्स बनाने की, जिसमें हमने कोर्स सिलेबस को और भी बाकी किताबों को हमने ऑडियो में कन्वर्ट किया था। उसके बाद हमारा एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था संवेदना, जिसमें यहाँ के वृद्धाश्रम के वृद्धों को लेकर के हमने समय बिताने का काम शुरू किया था, क्योंकि दरअसल अमूमन वृद्धाश्रमों में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होती है, ना खाने पीने की, ना कपड़ों की, ना कंबल की, लेकिन सिर्फ उनको जो कमी खटकती है वो है अकेलेपन की या उनको कोई साथी की जरूरत होती है। तो हमारे एनजीओ के लोग, हम जाते थे वहां पे उनके साथ समय बिताते थे और उनके साथ उनकी बातें शेयर करते थे, या कभी उनको हम पिक्चर ले जाते थे, कभी हम उनको पिकनिक ले जाते थे, या होली का प्रोग्राम, दिवाली का प्रोग्राम, इस तरीके के प्रोग्राम्स हम बनाया करते थे। कुछ चीजों की वजह से हमको उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ गया। फिर हमने एक प्रोग्राम हमने शुरू किया था अस्तित्व, जो डे केयर सेंटर था सीनियर सिटीजन्स के लिए। आकृति हमने किया था, जो बच्चों की वर्कशॉप होती थी, जिसमें दिन भर के समर कैंप तरीके का आकृति हमने उसको करीब 4 साल हमने कंटिन्यू किया और हर एज के बच्चों के साथ उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर के उनकी हॉबीज डेवलप करने तक का काम हमने उनके साथ किया। इसी के एक्सटेंशन में हमने एक काम किया था कि शिव तराई और अचानक मार के तरफ के जो बच्चे हैं, जो 10th वगैरह छोड़ चुके हैं या 10th पास नहीं कर पाए, उनके फॉर्म्स भरवा करके हमने उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई थी कि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले। तो एक काम हमारा वो भी रहा है। उसके अलावा हमने किया है जागृति, जो निर्वाचन आयोग के लिए हमने काम किया था इलेक्शन अवेयरनेस के लिए, तो उसमें हमने शहर भर में करीब 48 नुक्कड़ नाटक हमने अलग अलग लोकेलिटीज में किए थे और फिर हमने होली रंगोली एक इनिशिएटिव शुरू किया था प्लास्टिक से नो टू प्लास्टिक के साथ। होली रंगोली में हमने हर्बल कलर्स और वो चीज़ों को हमने मतलब बोला जाता है कि हर्बल कलर्स के साथ खेला जाए, लेकिन उनको बनाए कैसे, तो हमने इसकी प्रॉपर वर्कशॉप्स करी थी कि होली के कलर्स के अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, जैसे पालक को सुखा करके हरा कलर, हल्दी और ऑरेंज पील, टेसू, हमने इन सब से कलर्स एक्सट्रैक्ट करने की हमने वर्कशॉप प्रोफेशनल्स को बुला करके यहाँ पे करी थी। तो उसका हमने होली रंगोली नाम रखा था। नो टू प्लास्टिक्स के अंतर्गत हमने पुराने कपड़े इकट्ठे किए और उनके सिलवा करके थैलों को हमने इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसे कई बार हमने शनिचरी और ऐसी जगहों पे जा करके जो कि उस समय पेपर बैग्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जा करके ये क्लोथ बैग्स हमने उनको प्रोवाइड किए थे। इसके अलावा हमने बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए रोज एक कहानी का कॉन्सेप्ट शुरू किया था जो अर्पा के थ्रू ही रिले होता था। उसके अलावा भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में वो कहानियां उपलब्ध रहीं। बॉडी डोनेशन कैंप्स, आई डोनेशन कैंप्स, हमने बहुत उनमें जाकर के पार्टिसिपेट्स किया है। और भी एनजीओस के साथ मिल करके हमने इस पे काफी काम किया है। नुक्कड़ नाटक, ड्रामास, स्किट्स, रेडियो से इनकी इंफॉर्मेशन अवेयरनेस को करने हमने उस पर भी बहुत ज्यादा किया है।
तो आपने इतनी सारी चीजों पे काम किया है कि मैं तो उंगलियों पे गिन भी नहीं पा रही हूँ कितने दिशाओं में आपने काम किया है अलग अलग चीजों को आगे लेकर। तो इन सारी चीजों पर काम करने की मोटिवेशन कहाँ से मिलती है?
मोटिवेशन की बात नहीं होती है, एक अंदर से इच्छा आती है कि करना है। और जब हम अपने आसपास ये सब चीजें देखते हैं तो हमें अंदर से फील होता है कि जब सोसाइटी हमें कुछ दे रही है तो वी शुड गिव इट बैक टू सोसाइटी। हम तरीके खोजते हैं कि हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी किस तरीके से दे सकते हैं। तो चीजें अपने आप आते गई, लोग दिखते गए, साथ हमें मिलता गया और हम आगे बढ़ते गए।
जी बिल्कुल, वो तो हम देख ही पा रहे हैं कि इतनी बड़ी प्रेजेंटर्स टीम है आपकी और साथ में इतने सारे श्रोताओं का प्यार भी है। तो रचिता जी, आप अपने एनजीओ के माध्यम से तो काम करती ही हैं, पर साथ में अर्पा और लिब्रा ने और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, तो उनके बारे में जरा बताइए कि किन किन प्रोजेक्ट्स पे आपने कोलैबोरेशन में काम किया है।
हमने लोकल एनजीओस के साथ काफी काम किया है जिनमें हैंड्स, यूथ संस्कार, ब्लाइंड स्कूल, इसके अलावा नेशनल्स में हमने यूनिसेफ और स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, यहाँ के जो लोकल डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ, निर्वाचन आयोग, इन सब के साथ मिलकर के हमने कई प्रोजेक्ट्स कोलैबोरेशंस में किए हैं और आगे भी करते रहने की इच्छाएं हैं। देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। हमारी वही रहती है कि हम बस अच्छा काम करते चलें, बाकी तो सब बढ़ते चले जाते हैं, साथ मिलता चला जाता है।
आपसे बातचीत के अंत में ये कहना चाहूंगी कि आज अर्पा का जन्म दिवस है, तो आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी?
आपसे ही अर्पा है, अर्पा पूरा नहीं हो सकता अगर आप लोगों का साथ नहीं मिलता है। तो अर्पा के स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
रचिता जी से तो बात हो गई, क्या आप पहचान पाए कि इनकी आवाज आपने कहाँ सुनी है और किस कार्यक्रम में? जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं, ये वही है हमारी छोटी सी प्यारी सी टिन्नी जिनको आप हमेशा सुनते हैं हिंसा को नो के कार्यक्रम में। अभी आपको मैंने मिलवाया ना हमारे हिंसा के नो कार्यक्रम की टिन्नी से, तो चलिए अब चलते हैं हिंसा को नो कार्यक्रम के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स के पास, यानी कि हमारी मातृका दीदी और आकांक्षा दीदी के पास, और इनसे जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में।
नमस्कार श्रोता साथियों, मैं आकांक्षा ठाकुर और ये प्रोजेक्ट दिल्ली के एनजीओ स्मार्ट एनजीओ के द्वारा हिंसा को नो प्रोजेक्ट पूरे देश भर के 7 राज्यों के 13 कम्युनिटी रेडियोस के साथ चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक कम्युनिटी रेडियो के द्वारा इनके क्षेत्र में 20-20 महिलाओं का 4 ग्रुप बनाया गया है और 2 कम्युनिटी रेडियो ने इसके साथ साथ एक एक पुरुषों का ग्रुप भी बनाया है।
अर्पा रेडियो द्वारा ये प्रोजेक्ट पहले ही बिलासपुर के सेंद्री से आगे के 5 गांव में चलाया जा चुका है। सेंद्री, गतौरी, सेमरा, सेमरताल और जलसो, इन 5 गांवों में चलाया जा चुका है। और फिलहाल हम बिलासपुर के 4 अलग अलग क्षेत्रों के 20-20 महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं। ये ग्रुप्स हैं, कुदुदंड का एक ग्रुप, मधुबन, हेमूनगर और सेक्रो और रेलवे स्थित लिटिल बनी स्कूल के आया दीदियों का ग्रुप, इस प्रोजेक्ट के तहत हम हर हफ्ते इन महिलाओं से मिलते हैं, उनको हिंसा से जुड़ी अलग अलग जानकारी देते हैं। इसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि लिंग आधारित हिंसा क्या होती है, उसमें अगर किसी व्यक्ति के ऊपर लिंग आधारित हिंसा हो रही है तो उनको कहां कहां से मदद मिल सकती है, हिंसा के प्रकार क्या होते हैं, उनके प्रभाव क्या होते हैं, और हिंसा से जुड़ी महिलाओं के सारे अधिकारों की बात हम इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत करते हैं। इस प्रोजेक्ट का मुख्य ध्येय महिलाओं को हिंसा के बारे में जागरूक करना और इसके साथ साथ मदद मिलने वाले सखी वन स्टॉप सेंटर के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी देना है, क्योंकि महिलाएं लगातार हिंसा सहती हैं। इसका एक कारण ये भी है कि उनको मदद मिलने वाली जगह के बारे में जानकारी नहीं है, उनके अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम महिलाओं को इन सारी बातों से अवगत कराते हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से।
तो मातृका दीदी और आकांक्षा दीदी, आज अर्पा रेडियो का स्थापना दिवस है, इस उपलक्ष्य में आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी?
हम दोनों की तरफ से अर्पा रेडियो के सभी श्रोताओं को अर्पा स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
तो श्रोता साथी, आप सुन रहे थे हिंसा को नो के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मातृका दीदी और आकांक्षा दीदी को। और आपको मैं बता दूं कि इसी प्रोजेक्ट में फेलो के रूप में मैं भी जुड़ी हुई हूं। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम कोशिश करते हैं हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकें और उनमें ये हिम्मत ला सकें कि यदि कुछ गलत हो रहा है तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। और इसीलिए हम कहते हैं, सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। तो चलिए 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 चलते हैं अगले प्रस्तोता के पास। तो अंत में उनके पास चलते हैं जिनसे अर्पा रेडियो की शुरुआत हुई, जिनकी परिकल्पना ने अर्पा रेडियो को आकार दिया और जो हमारी सारी गलतियों को, सारा फैलाए हुए रायते को एक साथ समेटती हैं, हमारी मदर फिगर संज्ञा मैम। मैम, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कम्युनिटी रेडियो की शुरुआत करने का आइडिया आपको कैसे आया?
रेडियो के साथ में बचपन से जुड़ी हुई रही, एक चाइल्ड आर्टिस्ट थी तब से लेकर के आज तक। लगातार मैं रायपुर आकाशवाणी और फिर बिलासपुर आकाशवाणी से जुड़ी रही। इस बीच मैंने ऑडियो का बहुत सारा काम किया और देश भर के ऑडियो के लोग मेरे साथ जुड़ते चले गए। एक दिन जब मुझे पता चला कि कम्युनिटी रेडियो जो सिर्फ एजुकेशनल सेंटर्स को दिया जाता था वो अब एनजीओस को भी दिया जाने लगा है, तो बस अप्लाई कर दिया।
तो ऐसे आइडिया आया अर्पा का, और ये सोच कब आई आपको?
मुझे आकाशवाणी में माथुर सर थे, अरविंद माथुर अनाउंसर, उन्होंने इस बारे में बताया था और उन्होंने कहा कि अप्लाई कर देना चाहिए। तो ये बात शायद 2012-13 की होगी। बस अप्लाई करके हमको 6 कॉपीज में एप्लीकेशन भेजनी थी, भेज करके डाल दिया। उसके आगे कोई गाइड करने वाला ही नहीं था। कभी कुछ मंत्रालय से कोई कागज आ जाता था, कोई फोन आ जाता था, कभी मेल आ जाता था कि ये भेज दीजिए वो भेज दीजिए, भेजते रहते थे, करते रहते थे। ऐसा करते करते 2018 आ गया, लेकिन हमको रेडियो नहीं मिला और हम अपने आकाशवाणी के कार्यक्रमों में, ऑडियो के कार्यक्रमों में, ऑडियो के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर ही लगातार बिजी रहे। और फिर बहुत सारी और भी परेशानियां आती रही, बैंक वाले गारंटी नहीं दे रहे, कुछ हो रहा, हमको दिल्ली से कोई कनेक्शन नहीं हो रहा। धीरे धीरे करके 2019 में हमारा MOU हुआ गवर्नमेंट के साथ, जिसको कम्युनिटी रेडियो की भाषा में गोपा कहा जाता है। तो वो हमको 2019 में मिला। हम टेस्ट प्रसारण करने के लिए एलिजिबल हुए। तो ये बात 2019 के उस दिन की है जब कोरोना शुरू हुआ था और पहला लॉकडाउन लगा था 24-25 मार्च की। उस दिन हमारे यहाँ 8 घंटे का प्रसारण पहली बार अर्पा रेडियो पर हुआ, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऑडियो के कलाकार, थिएटर के कलाकार, रेडियो के कलाकार रहे हैं। तो करीब हम 8-9 लोग स्टूडियो में थे और लगातार लाइव प्रसारण कर रहे थे। उस दिन कलेक्टर से, कमिश्नर से, SP से, सब लोगों से फोन पे बात कर रहा है, कोई एडिट कर रहा है, कोई कुछ। तो वो हमारा पहला दिन था जब देश में लॉकडाउन लगा था, उस दिन अर्पा रेडियो की शुरुआत हुई थी। इसको हम ऑफिशियली शुरुआत नहीं कह सकते क्योंकि ये टेस्ट प्रसारण था। और इसके बाद फिर कोरोना के 2 साल गुजरते गुजरते हमको जब लाइसेंस मिला तो वो तारीख थी 2 फरवरी 2021। तो हमने ऑफिशियली प्रसारण 1 अप्रैल 2021 से किया, यानी कि हमारा रेडियो बहुत छोटा सा बच्चा ही है। 21 से 24 तक पहुंचे हैं हम अभी।
फॉर्म भरने से लेके लाइसेंस मिलने तक बीच में कितने साल लग गए?
तकरीबन 7 साल।
और ये नाम अर्पा, इसके पीछे की क्या कहानी है?
हम लोग बिलासपुर के रहने वाले हैं और बिलासपुर का ये कम्युनिटी रेडियो था। और बिलासपुर का नाम या तो बिलासा से जुड़ा होता है या अरपा से। अरपा हमारी नदी है और बिलासा केविटिन के नाम से बिलासपुर शहर पड़ा है। तो इन दो नामों की चॉइस में हमारी जो एनजीओ ग्रुप था, हमारी जो टीम थी, उन लोगों ने मिलकर तय किया कि अरपा नाम ज्यादा अच्छा है। बिलासपुर की जीवनदायिनी नदी अरपा और अरपा की धारा को हम सुरों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से सिर्फ अपने क्षेत्र में नहीं देश दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे। तो अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 के साथ जो हमारा अरपा वेब रेडियो ऐप और वेबसाइट के थ्रू चल रहा है, तो वाकई अब ये धाराएं दूर दूर तक जाने लग गई हैं।
मतलब इतने सुंदर विचारों के साथ इस नाम को रखा गया, इतने प्यार से ये अरपा की शुरुआत हुई। और
मैं बताऊं, बहुत दूर दूर से जब भी हमारे लोग रेडियो सुनते हैं, कभी श्रोताओं के फोन आते हैं या हमको कोई मिलता है, लोग कहते हैं कि अरपा क्या है, उनको लगता है हम कुछ गलत बोल रहे हैं, अपना होगा या
कुछ और ही शब्द होगा।
अरपा का अर्थ कोई समझ नहीं पाते हैं, वो लोग पूछते हैं ये अरपा क्या है, इवन डिक्शनरी में खोज खोज भी करके भी आते हैं। लेकिन जब हम उनको बताते हैं हमारे शहर की नदी का नाम है, तो वो लोग सब बड़े खुश होते हैं। और वाकई बहुत दूर दूर तक अब अरपा का नाम, बिलासपुर का नाम जाने लगा इस रेडियो के नाम से।
बिल्कुल, जिस तरीके से अरपा का पानी बहकर हर जगह पहुंच रहा है, वैसे ही हम भी आवाज के माध्यम से हर कोने कोने तक पहुंचेंगे। और आज अरपा का स्थापना दिवस है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, हमारे श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे?
बहुत छोटा सा वक्त गुजरा है 3 साल का, हम चौथे साल में अभी हमने प्रवेश किया है ऑफिशियली अरपा रेडियो ने, और उस हिसाब से हमारे श्रोताओं ने जितना प्यार दिया, जितने अच्छे से जुड़े, हमारी टीम जितनी अच्छे से बढ़ती चली जा रही है, इतने अच्छे प्रस्तोता, इतने अच्छे लिसनर्स, तो देखकर खुशी होती है। लगता है बहुत जल्दी जो है, अभी तो हम बचपने में हैं, बहुत जल्दी जो है ये अरपा रेडियो बड़ा होगा और विशाल होगा, और सबका सहयोग और प्यार स्नेह तो हमारे साथ है ही, जो दिनों दिन लगातार बढ़ता जा रहा है।
मैम, तो आगे आपने क्या सोचा है और अरपा रेडियो के माध्यम से आप क्या क्या करना चाहती हैं?
सोचना तो हर दिन बदलता रहता है, रेडियो में हर दिन एक नया प्रोग्राम, सोच तो हर दिन बदलती रहती है। रेडियो में कल क्या प्रोग्राम जाना है, अभी तो हम इस सोच पे ही लगे रहते हैं, और देखते हैं अरपा नदी की तरह बहते हुए हमारा अरपा रेडियो किस तरफ बढ़ता जाता है। श्रोता जो चाहेंगे, कम्युनिटी रेडियो में जो हमारे आसपास का समुदाय जो चाहेगा, हम बस उन लोगों की कल्पनाओं को पूरा करने में लगे रहेंगे। बस यही उम्मीद है, यही वादा है।
संज्ञा मैम की बातें सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा और काफी चीजें पता चली अरपा रेडियो के शुरुआत से जुड़ी हुई। तो कैसा लगा आपको आज का कार्यक्रम, जरूर बताइएगा, और अपने विचार, अपने ख्याल और अपने फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा। चिट्ठी आई है मेल के रास्ते या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9179132444 पर। एक बार फिर से आप सभी को अरपा रेडियो के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही हमारा साथ देते रहिएगा। तो अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, दीजिए अलंकृता को इजाजत। चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे अगले सोमवार, तब तक के लिए नमस्कार।
गजर क्या गाए,
गजर की तरह विशिष्ट अंदाज में अपनी आवाज के साथ बिलासपुर वासी,
बिलासपुरियंस की आवाज,
ये है आपका अपना अरपा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अरपा वेब रेडियो।
गजरनी।